राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन सारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन सारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन सारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन सारी यमुना तीरवन सारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन सारी यमुना तीरवन सारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Giridhari, Radha Giridhari Radhe. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Harinam Sankirtan ki, Srila Prabhupada Maharaj ki, Granthraj Srimad Bhagavatam ki, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirahe Nashta Prayesu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Neshthakim.
Bhagavatam, Skandas, Adhyay Gyara, Slok Karamak, Chauda. Hirarantam, Sa, Sutam, Bale, Ativelanam, Sahagrajam, Yashoda,
अजोहविता कृष्णं पुत्रस्नेहस्तुतस्तने किरणन्तं सासुतं बाले किरणन्तं सासुतं बाले अतिवेलं सहग्रजम् अतिवेलं सहग्रजम् यशोदा जोहवित कृष्णम् यशोदा जोहवित कृष्णम् पुत्र स्नेह स्तुतस्तने पुत्र स्नेह स्तुतस्तने क्रीडन्तं सासुतं बाले अतिवेलं सहग्रजम् यशोदा जोहवित कृष्णम् पुत्र स्नेह सुतस्तने क्रीडन्तं सासुतं बाले अतिवेलं सहग्रजम् यशोदा जोहवित कृष्णम् पुत्र स्नेह सुतस्तने क्रीडन्तं सासुतं बाले शब्द अर्थ इस प्रकार है किरणंतम खेल में व्यस्त सा उस सुतम अपने पुत्र को बाले अन्य बालकों के साथ अतिवेलनम विलंब से छह अग्रजम अपने बड़े भाई बलराम के साथ यशोदा माता यशोदा ने अजोहवित बुलाया अरे कृष्ण तथा बलराम आओ कृष्णम कृष्ण को पुत्र स्नेह स्तुत स्तने उन्हें बुलाते हुए स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। શિષ્ય રાધા ગિરધારી ભગવાન કી, જગન્નાથ બળદેવ સુભદ્રા મૈયા કી, જય શિષ્ય ગૌર નિતાય કી. यद्यपि बहुत देर हो चुकी थी किंतु कृष्ण तथा बलराम अपने खेल में अनुरक्त होने के कारण अन्य बालकों के साथ खेल रहे, इसलिए अब माता यशोदा ने भोजन करने के लिए उन्हें बुलाया. कृष्ण तथा बलराम के प्रति उत्कृष्ट प्रेम तथा स्नेह होने से उनके स्तनों से दूध बहने लगा. तात्पर्य, जोहवित शब्द का अर्थ है बारंबार पुकारना. उन्होंने पुकारा, कृष्ण तथा बलराम वापस आ जाओ, खाने को देर हो रही है, अब बहुत खेल चुके हो, वापस आ जाओ. ओम अज्ञान्ति मिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्नवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानुकं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वंशा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुषः पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यास्त अहम् प्रपद्ये. सूर्यशतसमकान्ति अरुणवसन सुबलिप्रकांड देह कमललोचन. क्रीडन्तं सासुतं बालैर् अतिवेलनं सहव्रजम् यशोदा जोहवित कृष्ण पुत्र स्नेह स्तुतस्तनी. श्री गोकुल में नंद बाबा के आंगन में थोड़े ही दूर यमुना बह रहे हैं और उस यमुना के किनारे पर कृष्ण बलराम और अन्य सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं. सरित तीरम गतम कृष्ण सरितम, उस यमुना नदी के तीर पर कृष्ण बलराम अन्य गोप सखाओं के साथ खेल रहे हैं. और कई समय से खेल रहे हैं, सुबह से, आगे आएगा श्लोक में प्राप्त, सुबह का समय से खेल रहे हैं और अभी मध्याह्न दोपहर होने को आया है. तो इसलिए माता यशोदा ने देवी रोहिणी को उनको बुलाने के लिए भेजा। माता रोहिणी कृष्ण बलराम जहां खेलते हैं वहां जाकर बुलाने लगी, कृष्ण और बलराम आओ, अभी मध्याह्न हो गया है, भोजन का समय हो गया, आप जल्दी आ जाओ। लेकिन माता रोहिणी बुलाने के कारण, वो अभी खेल में व्यस्त होने के कारण वो आए नहीं कृष्ण बलराम। तो वहां बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि रोहिणी बुलाने से क्यों नहीं आए, क्योंकि वो राज पत्नी थी, वैसे वसुदेव की पत्नी है ना रोहिणी माता, तो उसमें थोड़ा ऐश्वर्य भाव साथ में था। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि राजपत्नी होने के कारण ऐश्वर्य भाव थोड़ी महारानी का भाव रहता ना, वैसे यशोदा मैया तो व्रज में उनका जन्म हुआ है और व्रजवासी वैश्य जाति के हैं, वैसे ही उनका स्वभाव एकदम सरल होता है, जो गांव में रहते हैं उनका स्वभाव वैसे ही नरम और सरल रहता है, लेकिन जो राज परिवार से है और अन्य शहरों में रहते हैं उनका स्वभाव थोड़ा ऐश्वर्य या कठिन कठोर थोड़ा होता है। तो इसलिए रोहिणी माता ने दो श्लोक में व्याख्या करते हैं सुखदेव गोस्वामी के बुलाने के लिए बुला रहे हैं कृष्ण बलराम को, लेकिन वो देखे तक नहीं रोहिणी माता के सामने, वो वैसे इतने खेल में व्यस्त थे मस्त थे। तो रोहिणी माता को बुलाने से वो नहीं आए। फिर आज के श्लोक में फिर रोहिणी माता जाती है यशोदा मैया के पास और कहती है कि आप ही बुलाओ, आप जब बुलाएंगे तभी वो लोग आएंगे। तो इसलिए आज के श्लोक में जो है तो माता यशोदा कृष्ण बलराम को बुला रही है। और प्रभुपाद ने तात्पर्य में इतना ही लिखा है, तीन बार लिखा है कि कृष्ण जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, बस और कुछ तात्पर्य दिया नहीं है प्रभुपाद ने। तो इधर वात्सल्य भाव और साक्ष्य भाव दोनों प्रकट हो रहे हैं, कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, तो इधर पूर्ण रूप से साक्ष्य भाव का आस्वादन कर रहे हैं और इधर माता यशोदा स्नेह के कारण वात्सल्य भाव में उनको बुला रही है और वात्सल्य भाव स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध भी बह रहा है। यही स्नेह का लक्षण होता है, जब माता के पुत्र के प्रति अति स्नेह होता है तो अपने आप अपने स्तनों से दूध बहने लगता है। तो इसी तरह वात्सल्य प्रेम और साक्ष्य प्रेम दोनों के बीच का श्लोक है आज। तो ऐसे भगवान कृष्ण के साथ ही इन मधुर रस का आस्वादन किया जाता है। शांत रस का तो सभी अवतारों में आस्वादन होता है करते हैं, लेकिन उससे अधिक प्रेमपूर्ण और मिठास मधुर रस या दास्य से भी अधिक रस पूर्ण है मधुर है साक्ष्य वात्सल्य और माधुर्य। तो भगवान कृष्ण के साथ ही ये साक्ष्य रस का आस्वादन होता है, वात्सल्य रस का आस्वादन होता है और माधुर्य रस का आस्वादन होता है। अन्य अन्य अवतार में हम देखते हैं कि वो शांत रस और दास्य रस तक ही सीमा होती है, उसके आगे साक्ष्य बहुत कम दिखाई पड़ता है और वात्सल्य और माधुर्य का बात ही नहीं होता है। भगवान लक्ष्मीदेव जब प्रकट हुए तो उनके साथ जब उनके सामने कौन जाएगा साक्ष्य रस प्रकट करने के लिए, वैसे ही डर जाएंगे। उनके पुत्र ब्रह्मा जी भी डर गए उनके सामने, तो फिर वो अन्य जीव की तो क्या दिशा होगी, उनके साथ क्या साक्ष्य भाव प्रकट कर पाएंगे। और माधुर्य और वात्सल्य प्रेम को तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर कोई माता को वात्सल्य प्रेम लेकर उनके सामने जाएंगे और स्नेह के कारण उनके स्तन में दूध झरने लगा और नरसिंह भगवान का दर्शन करेंगे तो दूध ही सूख जाएगा डर के कारण, क्योंकि वो उसमें वो रस नरसिंह भगवान के वो शांत और दास्य तक ही रस सीमित रहता है। उनके सामने मोरपंख झाड़ सकते हैं और बहुत बहुत उनकी सेवा कर सकते हैं, तो शांत रस या दास्य रस का स्वादन कर सकते हैं, साक्ष्य रस वात्सल्य रस और माधुर्य रस नहीं प्रकट। और वैसे ही भगवान राम के साथ भी थोड़ा हद तक दास्य रस प्रकट होता है ज्यादा, लेकिन साक्ष्य रस भी बहुत कम हम देखते हैं रामायण में, बहुत कम प्रकट हुआ है। हनुमान जी बहुत प्रिय भक्त हैं उनके, लेकिन सेवा दास्य भाव से करते हैं, साक्ष्य रस में कभी उनका सेवा नहीं हुआ या प्रेमपूर्ण व्यवहार भी नहीं पाए जाते हैं रामायण में। क्योंकि सीमित है, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, उनके साथ सखा का भाव और कंधे पर आरोहण करना वो तो बात दूर की रहे। कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन अगर सहाय कोई सखा को अपने कंधे पर बैठाना वो नहीं बैठा सकते, लेकिन यहाँ कृष्ण के साथ जो सखा खेल रहे वो अपने आप कृष्ण के कंधे पर चढ़ कर बोलते घोड़ा बन जाओ, उनके साथ खेलने लगते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से वहां वो भाव प्रकट होता है साक्ष्य का। और वात्सल्य का और माधुर्य का बात तो छोड़ ही दीजिए, भगवान श्री राम की इसी नासिक में पंचवटी में जब चुपरंखा आई भी उनके सामने तो वो भी मोहित हो गए भगवान राम को देखकर, सुंदर वेश बनाकर आई थी और मोहित होने के कारण वो कहने लगे मुझे आपसे विवाह करना है। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी के पास में, भगवान राम ने कहा मेरे पास तो एक पत्नी है, तो आप मेरे अनुज हैं उनके पास जाइए। तो सुपर्णखा उनके पास गए तो लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, तुम तो दास हूँ श्री राम का, अगर तुम मेरे साथ विवाह करोगी तो दासी बनना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि आपके लिए मेरे अग्रज जो बड़े भाई हैं उनके साथ ही आप विवाह कीजिए। तो वहां फिर सुपर्णखा राम के पास जाती है, तो राम भी इसी तरह उधर लौटाते उधर करते, फिर लक्ष्मण को आदेश देते उनका नाक काट दो। वैसे ही उसका कोई दोष नहीं था, भगवान का ऐसे ही मोहिनी रूप है, कोई भी जीव मोहित हो जाता है, लेकिन भगवान राम ने उनकी इच्छा पूरा नहीं किया। वैसे इच्छा तो पूरा नहीं किया, बात छोड़िए, उनका नाक ही कटवा दिया सुपर्णखा का। आज भी नासिक उसी नाम से प्रख्यात है जो नाक काटा, इसलिए। तो भगवान राम ने उनके स्वीकार नहीं किया मोहित होने के साथ भी, लेकिन इसी कृष्ण में हम देखते हैं कि जब मथुरा में प्रवेश किया बलराम के साथ और जब मथुरा परिभ्रमण करते थे, मथुरा नगरी देखने के लिए निकले उस नगर में, मथुरा नगरी में, तो वहां कुब्जा आई, वो भी कंस की दासी थी और सुपर्णखा रावण की बहन थी, वैसे देखा जाए तो दोनों सोचते कनेक्शन है दोनों का, वो कंस की दासी थी कुब्जा, लेकिन भगवान कृष्ण से मोहित हो गए। मोहित होने के साथ साथ भगवान को अर्पण किया चंदन, तुरंत भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर उनको खूबसूरत बना दिया उनका शरीर, वैसे भी कुब्जा थी, कुबड़ी थी उनकी पीठ पर, बड़ा कुबड़ी थी, वैसे टेढ़ी थी, लेकिन भगवान ने उनका भाव देखकर भगवान कृष्ण ने उनको सुंदर स्त्री बना दिया, वह सुंदर स्त्री बनाकर छोड़ नहीं दिया। फिर बाद में भगवान के लिए पूर्ण उनके मन की इच्छा पूर्ण भी की, जब कंस का वध करके फिर बाद में कुब्जा के घर पर जाते हैं भगवान और उनका मन की इच्छा पूर्ण करते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण के साथ जो भी रस बांधना चाहते, संबंध बनाना चाहते हैं, तो आसानी से भक्त कोई जीव बना सकते हैं, कैसा भी भाव हो, लेकिन अन्य अवतारों में वो प्रकट नहीं होता है। राम के साथ देखा हमने, अन्य अन्य अवतार में कोई भी आप लीजिए सीमित रहता है साक्ष्य तक ही, दास्य तक, लेकिन साक्ष्य वात्सल्य और माधुर्य भगवान कृष्ण के साथ ही हो सकता है। तो ये पूर्ण रूप से बाल सखाओ साक्ष्य रस में व्यस्त होकर क्रीड़ा करते हैं और अन्य अन्य जो क्रीड़ा करते हैं भगवान के साथ, यमुना में जल विहार करते हैं और कई कई क्रीड़ा जो आज के बच्चे लोग तो जानते भी नहीं, वो क्रीड़ा गिल्ली डंडा खेलना आपको किसी को बता दे आज के वर्तमान समाज में शहर के बच्चे को तो जानेगा नहीं वो क्या होता है गिल्ली डंडा, लेकिन भगवान कृष्ण सखाओं के साथ वही खेलते हैं। कुश्ती पढ़ाई थोड़ा बहुत जानते क्योंकि टीवी में देख लेते हैं, भगवान कृष्ण सखाओं के साथ कुश्ती भी खेला करते हैं और साथ साथ में झूला, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाना, प्रभुपाद ने वो भी चित्र बनाया है सखाओं के साथ झूलन झूलना, तो उस झूला भी झूलते हैं। और कहें कि ऐसे भी गांव के जो खेल की रमत होती है, एक लकड़ा लेते हैं और बीच में खंभा के साथ ऐसा लकड़ा डालते और दोनों छोर पर बच्चे बैठते और घुमाते हैं, जिस तरह सगदोल इधर घूमते हैं इस तरह भी खेलते हैं, लेकिन आज के वो बच्चे को नसीब में नहीं है खेलना, क्योंकि जो 3-2.5 साल का होता है तभी से उनको स्कूल में भेज देते हैं और स्कूल में इतना उनको बोझा डाल देते हैं पढ़ाई का तो उनके पास खेलना समय नहीं रहे, उतना पुस्तक किताबें डाल देते हैं और समय तो मिलता ही नहीं, ट्यूशन स्कूल अन्य अन्य पूरा समय उसमें व्यतीत होता है, और थोड़ा बहुत समय मिल गया तो उसमें क्रिकेट खेलते हैं घास के, उसमें कुछ वैल्यू नहीं है और प्राय किसी का दूसरा का नकल ही करते हैं। और दूसरा उसके ऊपर और भी आ गया ये मॉडर्न जमाने में मोबाइल, उसमें 2 साल का बच्चा भी गेम खेलता है देखा प्राय, तो उसी में उनका समय व्यतीत होता है पढ़ना, और थोड़ा बहुत समय मिला तो गेम खेलना या क्रिकेट खेलना, बाकी ये नदी के किनारे जाकर खेलना, अन्य अन्य वृक्ष के साथ खेलना, झूला झूलना, कुश्ती खेलना, ये भूल ही गए प्राय शहर के बच्चे। और इसी में उसकी जो गति है मंद बुद्धि है वो मंद हो जाती है, क्योंकि आगे वो देखते नहीं, कुछ प्रगति नहीं कर पाते हैं, बुद्धि रजोगुण और तमोगुण में आवित रहती है। ऐसे नदी किनारे पर जाकर खेलना वृक्ष के वृक्षों में, तो वहां सत्वगुणी वातावरण रहता है, तो उसमें बुद्धि सत्वगुणी बनता है, लेकिन आज के समय में तो है ही नहीं, इसलिए बुद्धि प्राय तमोगुण में रहती है और थोड़ा बहुत उसके हुआ तो रजोगुण, क्योंकि उनको वही मोबाइल से खेलना है और टीवी में देखना है और पढ़ाई करना है, और पढ़ाई में क्या कराते हैं वही भौतिक वस्तु। तो इसलिए यह दुर्लभ है आज के बच्चों के लिए इस तरह खेलना, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ जो बच्चे उनके मित्र खेल रहे हैं अति आनंद में, इसलिए माता रोहिणी ने बोला है फिर भी वो आए नहीं, क्योंकि इतने आसक्त थे खेलने में, और उसमें साथ साथ में भगवान कृष्ण जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और उनके साथ वो खेलते हैं, तब कौन बच्चा ऐसा होगा कि वो छोड़कर जाएगा, या भगवान के पूर्ण स्नेह से जो उनके साथ खेलते हैं तो कितना आनंद आता होगा उन बच्चों को उस खेल में। जो भगवान को देखते व्यक्ति या ब्रह्म अनेक अनेक तपस्वी जो देखने के लिए लालायित होते हैं, और ब्रह्म ज्ञानीवादी वो जो होते हैं वो देखने के लिए अनेक अनेक प्रयास करते हैं, उनका दर्शन नहीं कर पाते, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन बच्चों के साथ खेलते हैं, और खेलने के साथ मधुर आस्वादन भी कराते हैं अनेक अनेक खेलों का रसों का, और जो उनका माधुर्य सुंदर दर्शन है उसी से वो पूर्ण तृप्त हो जाते हैं बच्चे, तो उसी में लगे हैं कृष्ण बलराम और अन्य सखाओं के साथ खेलने के लिए, और माता रोहिणी उनको बुलाते हैं तो बुलाने के बाद भी वो नहीं आती है। तब माता रोहिणी जाती है यशोदा मैया के पास और कहती है कि आप ही बुला लो, क्योंकि आप जब बुलाएंगे, क्योंकि आपको कृष्ण और बलराम से अति स्नेह है, मुझसे भी ज्यादा स्नेह है, और स्नेह के कारण आप जब बुलाएंगे तब तुरंत कृष्ण बलराम आ जाएंगे। और बुलाने का हेतु यही था कि मध्याह्न हो गया था, मध्याह्न होने के कारण भोजन का समय हो गया था, और नंद बाबा भी आ गए थे गोचारण करके, उनको भी भोजन के लिए इंतजार कर रहे थे कृष्ण बलराम, क्योंकि प्राय देखे प्राचीन काल में रूपादा के तात्पर्य में लिखे हैं कि भोजन के समय पुत्र और पिता साथ में भोजन करते हैं, करते थे पहले, आज के समय में वह संभव नहीं है, प्रभुपाद लिखे आगे आप पढ़ेंगे हम, तो प्राय देखा जाता था कि अगर पिता देरी से आ गए तो पुत्र इंतजार करता कि कब पिता आए उनके साथ भोजन करेंगे, और अगर पिता पहले आ गए और बच्चा कहीं गया है तो वह भी इंतजार करते कब बच्चा आए और साथ में भोजन करेंगे, लेकिन आज के समय में वो संभव नहीं है, पिता सुबह निकल जाता है काम पर जॉब पर, बच्चा जब सोता है और रात को आता है 10 बजे, जब बच्चा फिर से सो जाता है तो जानता तक नहीं कि पिता कहाँ से कहाँ गए, कभी आए कभी गए, खाना तो बात की दूर ही रही। तो इसी तरह नंद बाबा इंतजार में है कि मध्याह्न हो गया है, कभी कृष्ण बलराम आएंगे और साथ में भोजन करेंगे, इसलिए माता यशोदा उनको बुलाने के लिए गई है, और आज के श्लोक में बुला रही है कि आप जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आगे के श्लोक में आएंगे क्यों आप जल्दी नहीं आते हो क्योंकि आपका इंतजार करते हैं जो नंद का राजा है नंद महाराज, तो आप जल्दी आ जाइए। तो इसी तरह भगवान को बुला और स्नेह के कारण बुला रही है माता यशोदा, और स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध भी बह रहा है। यही स्नेह का लक्षण है कि माता यशोदा के स्नेह अति स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध भी बहता है। तो भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते हैं और माता यशोदा उनको स्नेह के कारण बुला रही है, और खेल में इतने व्यस्त है उन सखाओं के साथ कि अन्य अन्य क्रीड़ा भी करते हैं। कभी कभी भगवान सखाओं के साथ खेलते हैं तो खेलने के कारण थक जाते हैं, तो थक जाते हैं तब अपने सब बालकों के साथ वो समझ जाते कभी नंद नंदन थक गए हैं, तो कुछ सखा वो जाते हैं और वृक्ष के नीचे जाकर जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं और पुष्प होते हैं उनसे सैया करते हैं, और सैया करते हैं कि फिर बाद में उनको लेके आते हैं कृष्ण को और उनको सुला देते हैं कोमल कोमल पत्तों के ऊपर और फूल के सैया पर। सुलाने के बाद कोई उनसे कृष्ण से कोई थोड़ा बड़ा सखा होता है उनके गोद में सिर रखकर कृष्ण सो जाते हैं, और उनसे जो छोटा रहता होता है उनका शरण दबाते हैं। इसी तरह लीला करते हैं और थक आराम करने के बाद जब उठते हैं तो फिर बाद में फिर से खेलना प्रारंभ कर देते हैं। और कभी कभी खेल खेल में भगवान कृष्ण थोड़े दूर चले जाते हैं या कुछ वृक्ष को या पुष्प को देखने के लिए, और अपने सब बालकों जब नहीं देखते कृष्ण को तब ढूंढने लगते किधर गए कृष्ण कहाँ गए, और जब दूर से दिखाई पड़ता है कि कृष्ण वहां खड़े हैं तब बच्चे लोग दौड़ते हैं कि मैं उनको पहले स्पर्श करूं, मैं पहले उनको पकड़ लूं, ऐसे होड़ लगती है सभी बच्चों को। तो बच्चे इतने मग्न और आविश होते हैं भगवान कृष्ण के साथ, एक क्षण भी उनको दूर होते हुए नहीं देख पाते, देखना चाहते हैं, उनके सामने ही रहना चाहते हैं, भगवान कृष्ण का हमेशा दर्शन करना चाहते हैं। और गोपियों ने बहुत गाया छह श्लोकों में वेणु गीत में भगवान कृष्ण सखाओं के साथ किस तरह खेलते हैं सुंदर भाव से। तो इसी तरह भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से यमुना किनारे खेलने में व्यस्त है और अपने बस सब बालकों के साथ अपने मित्रों के साथ खेलने के कारण इतना आसक्त है भगवान कृष्ण अपने ब्रजवासी सभी बच्चों से। जो भगवान कृष्ण हम जानते हैं कि जब उज्जैन भगवान पढ़ने के लिए गए जब शांतिपनी मुनि के आश्रम में, तब उस आश्रम में कई बच्चे थे पढ़ने के लिए शांतिपनी आश्रम में, और कृष्ण बलराम वहां गए तो वहां सुदामा को एक क्यों मित्र बनाया। वैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि कई बच्चे थे लेकिन उनको परम मित्र सुदामा को ही क्यों बनाया, क्योंकि सुदामा का नाम था जो उनके व्रज में उनके एक सखा का भी नाम है सुदामा। तो उस नाम का कनेक्शन होने के कारण उस द्वारकावासी पोरबंदरवासी जो सुदामा था उनको भगवान अति प्रेम और अति मित्र बनाया, क्योंकि उनका नाम सुदामा था, और एक व्रजवासी जो सखा थे उनका भी एक नाम था सुदामा। तो उस नाम के साथ व्रजवासी सखा की याद आने के कारण भगवान कृष्ण ने उस शांतिपुरी आश्रम में जो सुदामा के साथ पढ़ते थे अध्ययन करते थे उनको भी गाढ़ मित्र बना लिया। इतना स्नेह है भगवान कृष्ण को व्रजवासी से भी सखाओं को। और साथ में वहां तक लिखते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पांडवों को भी ऐसा ही है, पांच पांडव युधिष्ठिर महाराज अर्जुन भीम सहदेव अनुकूल, लेकिन अर्जुन को ही क्यों सखा बनाया। युधिष्ठिर महाराज तो धर्मपरायण थे तो उनको क्यों मित्र नहीं बनाया सखा बनाया। लेकिन वहां भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि अर्जुन को सखा इसलिए बनाया क्योंकि व्रजवासी में जो सखा था उसका भी एक नाम था अर्जुन। तो उस नाम के कारण भगवान कृष्ण उस पांडव पांच पुत्रों में अर्जुन को सखा बनाया, क्योंकि नाम से इतना प्रेम है भगवान कृष्ण को तो उस व्रजवासी जो सामने है उससे क्यों नहीं प्रेम होगा भगवान कृष्ण। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सभी जीवों को इस व्रज प्रेम देने के लिए प्रकटित हुए हैं, क्योंकि दुर्लभ है भगवान ने जो व्रज प्रेम दिया भगवान कृष्ण ने व्रजवासी को जो प्रेम दिया वो अति दुर्लभ है। उस दुर्लभ प्रेम को प्रदान करने के लिए वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में पधारे, वही व्रज प्रेम प्रदान करने के लिए। तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हैं, तो इस व्रज प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और प्रभुपाद ने यहाँ तक कहा है, एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रभुपाद बैठे थे, तब प्रभुपाद कभी कभी मजाक भी करते थे और कभी कभी हंसी में कुछ उपदेश और शिक्षा भी दे देते। तो सब बैठे थे शिष्यों के साथ, तो प्रभुपाद ने कहा कि हम भक्ति करते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, प्रपंच क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो अलग अलग भक्तों ने अलग अलग, हमारा लक्ष्य है गोलोक जाना, किसी भक्त ने कहा हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और किसी ने कहा हमारा लक्ष्य है अन्य जीवों का उद्धार करना। तो प्रभुपाद ने कहा ये ठीक है, लेकिन परम लक्ष्य हमारा यही है कि भगवान कृष्ण और बलराम के साथ हम क्रीड़ा करें, खेलें, और उनके साथ भोजन ग्रहण करें, जो यमुना नदी के यमुना के किनारे जो सखा के साथ भोजन करते भगवान कृष्ण, हम उसमें भी शामिल हो, यही हमारा परम लक्ष्य है। क्योंकि अब कई जगह पर ऐसा भाव प्रकट होता है कि भगवान प्रभुपाद साक्ष्य रस में भगवान क्या संबंध स्थापित हुआ है। तो इसी तरह प्रभुपाद ने भी कहा है कि यही हमारा लक्ष्य है कि भगवान कृष्ण के साथ हम यमुना किनारे सखाओं के साथ भोजन ग्रहण करें, उनके साथ खेलें, कि यही वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो इस तरह इस सखाओं के साथ भगवान कृष्ण खेल रहे हैं और बलराम के साथ और माता यशोदा बुला रही है, लेकिन अभी खेल में इतना व्यस्त है, खेल को छोड़कर जाना नहीं चाहते कृष्ण बलराम। तब माता यशोदा आगे के श्लोक में हम देखेंगे, कहती है हे कृष्ण, हे कमल नयन, आप जल्दी आ जाओ, क्योंकि आपने सुबह से कुछ अल्पाहार लिया है, अभी भूखे हो गए, आप जल्दी आकर प्रसाद ग्रहण करो, भोजन ग्रहण करो। और उतना कहने के बाद भी वो खेल छोड़कर नहीं आते, फिर बाद में कहते हैं कि आप जल्दी आ जाओ, आपके पिताजी नंद महाराज आपका इंतजार करते हैं, वो भी भूखे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए आप जल्दी आ जाओ। फिर भी नहीं आते कृष्ण बलराम उस खेल को छोड़कर, फिर कहते हैं उनके सखाओं के कहते हैं आप अभी आप अपने अपने घर में जाएंगे, तभी ये लोग कृष्ण बलराम आएंगे, इसलिए आप अपने अपने घर में जाइए, और आपका माता पिता जो इंतजार करते हैं। अन्य सखाओं को कहती है माता यशोदा कि आप अपने अपने घर में जाइए, अगर आप उनको अकेला छोड़ देंगे फिर ये कृष्ण बलराम नंद भवन में आएंगे, क्योंकि उनको छोड़कर जाना नहीं चाहते कृष्ण बलराम। लेकिन माता यशोदा स्नेह के कारण बुला रही है और उनके स्तनों से दूध भरा है। फिर बाद में कृष्ण बलराम जाते हैं और स्नान कराते हैं, और स्नान कराने के बाद उनको भोजन खिलाती है नंद बाबा के साथ। तो इसी तरह यह मधुर लीला जो इस हम श्रवण करते आ रहे हैं और आगे भी करें। सुखदेव गोस्वामी इस खेल की अनेक श्लोकों में व्याख्या की है, बार में अध्याय में वही गौचरण और बच्चों के साथ खेलना उसी का वर्णन है पूरा अध्याय में, तो बस विस्तार से वर्णन किया है सखा के साथ भगवान कृष्ण का खेलन लीला। तो ये मधुर लीला है भगवान की, और आगे फिर बाद में माधुर्य लीला का भी वर्णन आएगा। तो इसी तरह हमें ये प्रभुपाद की कृपा से इस श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो इस श्रवण करने के बाद उनका स्मरण करते हुए और इस ग्रंथ का भागवतम का अध्ययन करते हुए उनका नित्य स्मरण करना चाहिए, ताकि हमें हमारा मन भगवान कृष्ण के शरणों में लगे, और लगने के साथ साथ हमें भक्ति में भी आगे प्रगति हो सके, क्योंकि यही है स्मर्तव्य सतत विष्णु, सतत भगवान कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, यही सार है। तो इसी तरह हम स्मरण करते रहेंगे और अध्ययन करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा मन ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ इस लीलाओं में लगेगा और स्मरण होता रहेगा। तो प्रभुपाद की कृपा से हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है श्रवण करने का, तो इसी तरह मधुर लीलाएं दसम स्कंद चल रहा है तो इसका श्रवण करना चाहिए और अपना जीवन धन्य करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद महाराज की, गौर प्रेमानंदी।